वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिण वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे। जोर से बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम यहाँ पर जन्माष्टमी के उत्सव पर एकत्रित हुए हैं। भारत वर्ष की ये महानता है कि आज भी यहाँ पर वैदिक संस्कृति का पालन किया जा रहा है। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर और राधा कुंज बिहारी मंदिर में एकत्रित हुए हैं। इसे सिद्ध होता है कि लोगों के अंदर कृष्ण भावना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये वो दिन है जब आज से 5000 वर्ष पहले स्वयं भगवान इस धरती पर प्रकट हुए थे। भगवान कृष्ण का अवतार ये दिव्य है। भगवान कृष्ण का अवतार ये दिव्य है। अगर हम भगवान के विषय में जानना चाहते हैं तो हम भगवान के ही शब्दों से समझ सकते हैं या उन भक्तों के माध्यम से समझ सकते हैं जो भगवान को अति प्रिय हैं। गीता में जो कि भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण अपने आप के तत्व का निरूपण करते हैं, जब भगवान स्वयं अपने बारे में बताते हैं तो हम उनकी महिमा को जान सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधा भाव समन्विता। इसका अर्थ है कि मैं ही सब चीज़ों का स्रोत हूँ, सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगत सब मेरे से ही आते हैं। और जो व्यक्ति ये जान लेता है कि कृष्ण ही सब कारणों के कारण हैं, सब कुछ कृष्ण से आ रहे हैं, वो पूर्ण भाव से भगवान कृष्ण की सेवा में लग सकता है। तो भगवद गीता के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कई लोग कृष्ण को एक पॉलिटिशियन मानते हैं, कई लोग कृष्ण को एक एक्टर मानते हैं, लेकिन कृष्ण जब स्वयं अपने बारे में बताते हैं तब हम कृष्ण के तत्व को जान सकते हैं और उनकी सेवा में लग सकते हैं। भगवद गीता एक दिव्य शास्त्र है जो कि स्वयं भगवान के मुख कमलों से प्रकट हुआ है। श्री भगवान उवाच, गीता में व्यासदेव जो शब्द उपयोग करते हैं, श्री भगवान उवाच, वो कृष्ण उवाच क्यों नहीं कहते, वो श्री भगवान उवाच क्यों कहते हैं? ये बात पे जोर देने के लिए कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान हैं। भगवान के अनेक अवतार हैं, राम, नरसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य, लेकिन कृष्ण इन सारे अवतारों के स्रोत हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये श्लोक स्वयं ब्रह्मा जी ने रचना किया है और इस श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण का तत्व क्या है। कृष्ण परमेश्वर हैं, ईश्वर परम कृष्ण, अर्थात सारे ईश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण हैं। ईश्वर का मतलब है नियंत्रक, कंट्रोलर। हर क्षेत्र में कोई व्यक्ति ईश्वर होता है। जब हम देखते हैं कि आकाश से बरसात हो रही है तो हम जान सकते हैं कि ये इंद्र के द्वारा है, इंद्र बरसात के ईश्वर हैं। हमें जो हवा की प्राप्ति होती है इसके पीछे वायु देव हैं, पानी वरुण देव के कृपा से प्राप्त होता है, और जहाँ पर भी हमें अग्नि दिखाई पड़ती है ये समझना चाहिए कि ये अग्नि देव की कृपा है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी सृष्टि का नाश करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों के पीछे कृष्ण हैं। तुम्हें सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, भक्ति विनोद ठाकुर ये सुंदर भजन में बोलते हैं कि हे कृष्ण तुम सर्वेश्वर ईश्वर हो, सब ईश्वरों के ईश्वर हो, तुम्हारा इच्छा ब्रह्मा कोरे न सृजन, आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी रचना करते हैं दुनिया की, तुम्हारा इच्छा विष्णु कोरे न पालन, तुम्हारी इच्छा से भगवान विष्णु पालन करते हैं और तुम्हारी इच्छा से अंत में प्रलय के समय शिव जी संहार करते हैं, नाश करते हैं। तो कृष्ण वो व्यक्ति हैं जो सब कारणों के कारण हैं। सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण का रूप है। अभी आपने इतना सुंदर ड्रामा देखा, साक्षी गोपाल, अभी साक्षी गोपाल कहीं चले गए, यहाँ पर आपने देखा कैसे इतना सुंदर कि जिसमें दिखाया गया कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं और अपने अर्च्य विग्रह के रूप में भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भगवान का रूप सच्चिदानंद है, अर्थात वो रूप शाश्वत है, सत, चिद मतलब ज्ञान से पूर्ण है और आनंद से भरा हुआ है। ये है भगवान का रूप कृष्ण, जो कि सब कारणों के कारण है। कृष्ण धरती पर प्रकट हुए आज के दिन 5000 वर्ष पूर्व, दिल्ली के पास स्थान है मथुरा, आज भी आप मथुरा में जाओगे तो वो स्थान आपको दिखाई पड़ेगा जहाँ पर कृष्ण प्रकट हुए कंस के कारागृह में। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में किया गया है कि कैसे कृष्ण प्रकट हुए। महाराज शूरसेन के राजा थे जिनका नाम था वसुदेव, और वसुदेव का विवाह महाराज देवक की पुत्री देवकी के साथ निश्चित हुआ। वसुदेव जी और देवकी का विवाह होने के बाद कंस, जो कि देवकी का भाई था, वसुदेव और देवकी को ले जा रहा था रथ पर, और उस समय उनको यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी, अरे मूर्ख कंस, जिसको तुम रथ पर लेकर जा रहे हो उसी का आठवां पुत्र तुम्हारा काल सिद्ध होगा। अरे काल सिद्ध होगा, पदम पदम यद विपदम। जब कंस ने यह बात सुनी कि मेरी बहन का पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसका सारा स्नेह सारा प्रेम क्रोध के रूप में परिवर्तित हो गया। वो क्रोध में आकर एक हाथ से देवकी के बालों को पकड़ने लगा और हाथ में तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने कंस को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन कंस मानने को तैयार नहीं, और अंत में वसुदेव जी ने कंस को यह वचन दिया कि आपको डर जो है वो देवकी से नहीं है, आपको डर है देवकी के अष्टम गर्भ से। मैं ये वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी उसको मैं आपके पास लेकर आऊंगा, और आप चाहे जो कर सकते हैं। जब कंस ने यह सुना, उनको भरोसा था वसुदेव पर, वसुदेव बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे, इसीलिए कंस ने वचन को स्वीकार कर लिया और देवकी को मारने से रोक दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों का जन्म हुआ, और बड़े निर्दयता के साथ कंस ने उनका वध कर दिया। 7वें गर्भ के रूप में स्वयं बलराम जी प्रकट हुए, जो अनंत शेष से अभिन्न है, जो अपनी शक्ति से अपने फणों के ऊपर अनंत ब्रह्मांडों के धारण करते हैं। अदा कुंज बिहारी की जय। वो अनंत शेष जो अपने फणों के ऊपर असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, वो बलराम जी से अभिन्न है। देवकी के गर्भ में बलराम जी कुछ महीने रहे और फिर भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति योग माया को आदेश दिया कि तुम देवकी के इस 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो, ट्रांसफर कर दो। भगवान की आज्ञा पालन करते हुए योग माया ने बलदेव जी को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया, और फिर 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए। जब कृष्ण अपनी माता के गर्भ में थे तो उनके गर्भ से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा था। कृष्ण का जन्म वो असाधारण है, वो दिव्य है। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण अपने जन्म और कर्मों के बारे में बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म सब दिव्य है, और जो व्यक्ति ये जान लेता है कि कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है, वो इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं आता। मानव जीवन का उद्देश्य है हृदय की स्वच्छता को प्राप्त करना, हृदय को शुद्ध बनाना और उस स्तर पर पहुंचना जिससे अंत समय हम भगवान कृष्ण को याद कर सकें, हम भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकें। जैसे हम जन्म लेते हैं इस संसार में, कृष्ण का जन्म वैसा नहीं है। कृष्ण जगत के पिता हैं, कृष्ण जगत के माता हैं, अपनी स्वेच्छा से भगवान प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से अपनी लीला को अंत करते हैं। इसीलिए कृष्ण को भगवान कहा गया। तो जब कृष्ण प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? ऐसे नहीं जैसे साधारण पुरुष और स्त्री के संग से एक बच्चे का जन्म होता है। कृष्ण सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए और फिर वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में आए और फिर देवकी के हृदय से फिर देवकी के गर्भ में आए। जब कृष्ण देवकी के गर्भ में थे तो देवकी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था जिसको देखकर सब समझ गए कि ये आठवां गर्भ है, स्वयं भगवान है। उस समय ब्रह्मा, शिव, नारद, अनेक देवता आकर प्रणाम करके भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे और कंस समझ गया मेरा स्पेशल फ्रेंड कृष्ण अब आ रहा है। वह समझ गया कि यही बालक से मेरी मृत्यु होनी है, इसलिए बहुत घबरा गया। वो हर समय कृष्ण का चिंतन करने लगा, डर के कारण, भय के कारण। आज के दिन वातावरण बिल्कुल सुंदर हो गया, रोहिणी नक्षत्र था, बहुत अच्छी हवा बह रही थी, बादल मंद मंद गरज रहे थे और समुद्र की लहरें हल्के से बह रहे थे। कोयल और भ्रमर बहुत सुंदर रूप से गीत गा रहे थे और ब्राह्मणों की अग्नि जो कंस के डर के मारे बुझ गई थी वो फिर से प्रज्वलित हो गई। ऐसे सुंदर वातावरण में भगवान कृष्ण अपनी इच्छा से देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, ठीक ऐसे ही जैसे चंद्रमा पूर्व दिशा से प्रकट होते हैं। भगवान अजन्मा हैं लेकिन वो देवकी के गर्भ से जन्म हो रहे हैं। और जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। उनके चार हाथ थे, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उनके पास कौस्तुभ मणि थी, उनके सुंदर घुंघराले बाल थे और सिर के ऊपर मुकुट था। अब बताइए कौन साधारण बालक का जन्म ऐसा होता है? आप सबको शायद, आप में से जो माता पिता हैं आपने अपने बच्चों का जन्म देखा होगा। बहुत कम बच्चे होते हैं जो हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करते हैं। कृष्ण भगवान हैं वो सिद्ध करना चाहते थे। आजकल भारतवर्ष में बहुत सारे भगवान हो गए हैं। आप जानते हैं पूना में भी एक भगवान थे पहले, बेचारे भगवान मर गए अभी। और भी हरिद्वार में आप जाओ तो भगवान की लाइन है। लोग किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति को भगवान कह देते हैं, लेकिन शास्त्र के प्रमाण से हमें जानना चाहिए कि भगवान कौन है। भगवान का डेफिनेशन है जिसके अंदर सारा बल हो, सारी सुंदरता हो, सारा ज्ञान हो, सारा यश हो, वो भगवान है। इसीलिए हम कृष्ण को भगवान कहते हैं। कृष्ण प्रकट होते ही दिव्य रूप में प्रकट हुए। कृष्ण को, इस सुंदर रूप को देखकर वसुदेव और देवकी भगवान के चरणों में गिरकर अनेक रूप से प्रार्थना करने लगे, बार बार भगवान के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति करने लगे। और फिर देवकी ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप अपना द्विभुज रूप धारण करिए, जो दो हाथ वाला रूप है वो धारण करिए। और कृष्ण छोटे से बालक के रूप में द्विभुज कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव जी कृष्ण को मथुरा से गोकुल की ओर ले गए। कंस के सारे पहरेदार सो गए थे और भगवान की योग माया के प्रभाव से सारे दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को ले जा रहे थे। स्वयं अनंत शेष अपने आराध्य देव कृष्ण की रक्षा कर रहे थे और वसुदेव जी वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर नंद महाराज का घर था, गोकुल में। नंद महाराज की पत्नी का नाम था यशोदा और उसी समय यशोदा को एक पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ था। उनके पुत्र थे वृंदावन कृष्ण और उनकी पुत्री थी योग माया। और कृष्ण जो वसुदेव जी लेकर आए वो वासुदेव कृष्ण थे। वसुदेव जी ने कृष्ण को वहीं पर यशोदा के पास रख दिया और वो योग माया को वापस लेकर आए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी बाल्य लीला की और सबके मन को आकर्षित करने लगे। मैं थोड़ी सी कुछ लीलाओं को बताने का प्रयास करूंगा जिससे हम भगवान की महानता को जान सकें। भगवान सर्वशक्तिमान है और वो अपनी शक्ति के द्वारा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वृंदावन में जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी बाल्य लीला की वहाँ पर नंद महाराज और सारे कृष्ण के सखा मिलकर एक दिन इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। हर वर्ष उनकी ये परंपरा थी कि वो इंद्र की पूजा करते और इस वर्ष भी वो पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। भगवान कृष्ण गोपाल छोटे से बालक वो नंद महाराज के पास गए और बोले, बाबा 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 ये क्या तैयारी कर रहे हो। नंद महाराज सोच रहे थे कि ये कृष्ण छोटे से बालक हैं, इनको क्या समझाया जाए। लेकिन जब वो बार बार पूछने लगे तब नंद महाराज ने बताया कि हम इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र ये देवता हैं और उनकी कृपा से हमें बरसात मिलती है, इसलिए हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण उनको समझाने लगे कि हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें पूजा करनी चाहिए गिरिराज गोवर्धन की, क्योंकि गोवर्धन सबके भक्तों की इच्छा को पूरी करने वाले हैं। इसलिए जो आपने इंद्र के लिए सामग्री एकत्र की है उसी सामग्री से आप गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। कृष्ण सब ब्रजवासियों के प्राण धन थे। ब्रज में हर एक व्यक्ति की इच्छा होती कि कृष्ण को प्रसन्न करना और इसीलिए ब्रजवासियों ने कृष्ण के निवेदन को स्वीकार किया और जो पूजा इंद्र के लिए थी वही पूजा गोवर्धन को अर्पण कर दी। सारे भक्तों ने मिलकर गिरिराज गोवर्धन को सब भोग अर्पण किया और स्वयं कृष्ण एक विशाल रूप धारण करके सब ऑफरिंग्स को, सब भोग को स्वीकार करने लगे। वहाँ पर ब्रजवासियों ने अनेक पकवान बनाए थे, लड्डू हलवा पूरी कचौड़ी, सिर्फ सुनने से भी पेट भर जाए। और भगवान कृष्ण ने उन सबको एक ही क्षण में सब स्वीकार कर लिया और फिर कहने लगे, अनियोर अनियोर, इसका अर्थ है कि मुझे और अन्न चाहिए। ब्रजवासी भगवान कृष्ण को प्रणाम करते बोलने लगे, हमारे पास जो भी था हमने अर्पण कर दिया। और भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से जो सब भोग स्वीकार किया था वह वैसे का वैसे फिर से आ गया। सब ब्रजवासियों ने मिलकर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की और फिर ये महाप्रसाद सबको वितरित किया गया। सब बहुत प्रसन्न थे इस गोवर्धन पूजा से। सिर्फ एक ही व्यक्ति नाराज थे और वो हैं इंद्र। इंद्र सोच रहा था कि जो पूजा मेरे लिए थी वो श्याम सुंदर ने गिरिराज गोवर्धन को अर्पण कर दी, यह अन्याय है। जब व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति में बाधा आता है तो उसको क्रोध आ जाता है। इंद्र इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली बादलों को बुलाया जिसका नाम था संवर्तक, और संवर्तक बादल को आदेश दिया जाओ ब्रज में बरसात करो, ऐसी मूसलधार बरसात करो कि सारे ब्रजवासी नष्ट हो जाएं। और इंद्र के आदेश से इतनी तेजी से बरसात होने लगी, एक एक जो बरसात की बूंद थी वो खंभों के समान थी, बहुत जोर से बरसात हो रही थी और सारे ब्रजवासी घबरा गए, वो खतरे को देखकर डर गए और पुकारने लगे कृष्ण कृष्ण, थोड़ा जोर से बोली कृष्ण 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 कृष्ण, वो जोर जोर से हरे कृष्ण, वो जोर जोर से कृष्ण को पुकारने लगे और कहने लगे हे कृष्ण हमने ये इंद्र पूजा को बंद किया आपके आदेश से, अब आप ही हमारी मदद करो, हे गोपाल आप ही हमारी मदद करो। जैसे आपने देखा ये ड्रामा में कि साक्षी गोपाल अपने भक्त की मदद करने के लिए वृंदावन से दक्षिण भारत तक आ गए, ऐसे यहां पर गोपाल कृष्ण उन्होंने अपनी नन्ही सी उंगली पर विशाल पर्वत को धारण किया गिरिराज गोवर्धन को। आज भी आप वृंदावन में जाओगे तो ये पर्वत है, इसकी परिक्रमा करीब 21 किलोमीटर है और भगवान ने उसको एक अंगुली पर धारण किया, बाएं हाथ की अंगुली पर। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो कृष्ण अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर ये पर्वत धारण किया और ब्रजवासियों से कहा आप घबराओ मत, आप आओ आप इस पर्वत के नीचे आश्रय ग्रहण करो। और सारे ब्रजवासी 7 दिन तक उस पर्वत के नीचे रहे। इंद्र पूरे शक्ति से बरसात कर रहे थे लेकिन सारे ब्रजवासी सुरक्षित थे, और जो पानी साइड से गिर रहा था भगवान ने अपना चक्र भेजा सुदर्शन चक्र, जिससे कि सारा जो पानी है वो भाप बन गया। 7 दिन तक बरसात करने के बाद इंद्र प्रभु समझ गए कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए वो भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगने आए और भगवान ने उनके अपराध को क्षमा कर दिया। ये कहानी बताती है कि कृष्ण जब 7 वर्ष के थे तो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। अभी कई बार लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, हमें उनसे कहना चाहिए श्रीमान महाशय जी आप स्वयं सो भगवान, दक्षिण भारत में कल्कि भगवान हैं, हरिद्वार में बहुत सारे भगवान हैं, लंबी दाढ़ी रखने से लोग भगवान बन जाते हैं, तो उनसे कहना चाहिए अगर आप अपने आप को भगवान मानते हो तो भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत धारण किया था, आप ये टेबल को उठाओ 7 दिन के लिए, 7 दिन कल सुबह मंगल आरती तक उठा के दिखाओ, शायद उंगली में फ्रैक्चर हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। भगवान जब छोटे से थे उन्होंने पूतना नाम की राक्षसी को मारा, भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया, इस तरह से अनेक घटनाएं हैं जो दिखाते हैं कि भगवान साधारण व्यक्ति नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। कृष्ण के सारे क्रियाएं दिव्य हैं। कृष्ण ने अघासुर बकासुर पूतना ऐसे असुरों का अंत किया और एक जहरीला सांप जिसका नाम था कालिय उसको भगवान कृष्ण ने बुरी तरह से सजा देकर उसको वृंदावन से भिजवा दिया। यह है कृष्ण का बल और कृष्ण की सुंदरता, मैं और आप कल्पना नहीं कर सकते। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभान गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, अपनी मुरली बजाते हुए कोटि कोटि कामदेव से भी ज्यादा आकर्षक है। अभी आपने ड्रामा में देखा सब कैरेक्टर्स थे लेकिन कृष्ण कितने आकर्षक, अरे तो ड्रामा था, एक्चुअली कृष्ण कितने आकर्षक। जब ब्रज के गोपियां कृष्ण को देखते तो सोचते ब्रह्मा जी ने ये आंखें कैसे बनाई हैं कि हम कृष्ण की ओर देखना चाहते हैं इतना सुंदर रूप है कृष्ण का, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसे आंखें बनाई हैं जिसके पलके झपकते रहते हैं। ब्रह्मा जी मूर्ख हैं, उनको ऐसे आंखें बनानी चाहिए थी जिसे हम कांस्टेंट बिना रुकावट के कृष्ण को देख सकें। यह कृष्ण की सुंदरता है। स्वयं कृष्ण भी अपनी सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं, यह कृष्ण की महानता है। ऐसी कृष्ण का ज्ञान है। वेदाहम समदितानि वर्तमानि च चार्जुन, भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, भूत भविष्य और वर्तमान, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता। भगवान हर एक जीव को जानते हैं, हर एक जीव के भूत भविष्य और वर्तमान सब चीजों को जानते हैं, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं जान सकता। कृष्ण को वही व्यक्ति जान सकता है जो कृष्ण की शरणागति को स्वीकार करता है। और कृष्ण का वैराग्य, कृष्ण ने विरक्त थे, हालांकि कृष्ण ब्रज में बहुत सुंदर लीला करते, सबके मन को आकर्षित करते, लेकिन जब अक्रूर जी आए कृष्ण को ले जाने के लिए तो कृष्ण तैयार हो गए बिना किसी आसक्ति के, परम विरक्त। और कृष्ण का ज्ञान भगवद गीता के रूप में प्रकट हुआ है। 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने भगवद गीता बोली, और आज भी भगवद गीता सारे वैदिक शास्त्रों के सार के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स ये भी भगवद गीता से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इस तरह से कृष्ण के अंदर सब ज्ञान, सब बल, सब सुंदरता, सब वैराग्य और उनका यश। कृष्ण 5000 साल पहले प्रकट हुए, आज भी भारतवर्ष में लाखों करोड़ों की संख्या में, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से न केवल भारत में, अमेरिका में, रशिया में, अफ्रीका में, सब जगह पर लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, सब कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं और सब उत्साह से गा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दुनिया में कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, कोई राजनीतिज्ञ होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, तो लोग उसको कुछ साल तक याद रखते हैं, जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है लोग भूल जाते हैं थोड़े समय बाद। लेकिन कृष्ण आज भी सबसे पॉपुलर हैं। आप जगन्नाथपुरी में जाइए तो आप देखोगे लाखों की संख्या में लोग कृष्ण की रथ यात्रा के लिए आते हैं। तिरुपति में जाइए, बालाजी सबसे बड़े डोनेशन कलेक्ट करने वाले बालाजी हैं, वो बिना किसी प्रयास के लाखों करोड़ों रुपए रोज एकत्र कर रहे हैं। सबसे अमीर व्यक्ति भी कृष्ण है। ये है भगवान कृष्ण जिनका आविर्भाव दिवस हम आज मना रहे हैं। जन्माष्टमी का अर्थ है अपने हृदय में भगवान कृष्ण को बुलाना, कृष्ण की शिक्षाओं को पालन करना। आप सबका भाग्य है कि आपने भारतवर्ष में जन्म लिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी कर परोपकार। जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है वो बहुत भाग्यशाली है। उसका कर्तव्य है कि गीता और भागवत का संदेश दूसरों को सिखाना। भारत की खूबी दिव्य ज्ञान में है, कंप्यूटर्स में, टेक्नोलॉजी में और मेडिकल साइंस में नहीं है। भारत के पास वो ज्ञान है जो ज्ञान पूरे विश्व को दिशा दिखा सकता है। हमारे गुरुदेव श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ये भारत से इसी ज्ञान को लेकर अमेरिका गए 70 वर्ष की उम्र में। कल उनका आविर्भाव दिवस है और राधा कुंज बिहारी मंदिर में सवेरे से 10 बजे से उनका आविर्भाव तिथि होगी, आप सब आइएगा। तो श्रील प्रभुपाद एक व्यक्ति थे भारत से, उन्होंने भगवद गीता का ज्ञान प्रचार किया जिसे लाखों करोड़ों लोग कृष्ण भक्त बन गए। और अगर आप सब मिलकर इस कार्य में मदद करते हैं, न केवल आपका जीवन सफल होगा, पूरी मानवता को लाभ मिल सकता है। श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, कि पृथ्वी के हर देश और गांव में कृष्ण नाम पुकारा जाए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार पूना में इस्कॉन का इतना सुंदर केंद्र हो रहा है और अभी बहुत शीघ्र ही नए मंदिर के निर्माण का कार्य भी शुरू हो रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप यथाशक्ति स्वयं भी इस कार्य में योगदान दें और दूसरों को भी योगदान देने के लिए प्रेरित करें। ये राधा वृंदावन चंद्र का जो नवीन मंदिर है, ये एक कल्चरल सेंटर है, सांस्कृतिक केंद्र है, जहाँ पर सारे पूना वासियों को एक स्थान मिल सकता है जिससे वो कृष्ण कथा सुन सकें और कृष्ण नाम गा सकें। कृष्ण जन्माष्टमी का अर्थ है अपने हृदय में कृष्ण का अभिषेक करना और बाहर में अर्च विग्रह का अभिषेक करना। अभी थोड़ी देर में हम लोग अर्च विग्रह का अभिषेक करेंगे और हृदय में कृष्ण का अभिषेक होता है हरि नाम के द्वारा। वही कृष्ण जब 5000 वर्ष पूर्व भगवद गीता का ज्ञान दिया, वही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने हमें सरल तरीका सिखाया है उनकी पूजा करने का। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चित्त के दर्पण को स्वच्छ करने के लिए सरल उपाय है हरि नाम कीर्तनम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण नाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। इस दुनिया में सब जीव बहुत दुखी हैं आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक कष्टों के कारण। ये सारे दुख दूर हो सकते हैं अगर पूरी मानवता नाम संकीर्तन में भाग लेती है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत उद्धार। इस घोर कलयुग में कृष्ण अपने नाम के रूप में आए हैं। जब हम प्रेम से कृष्ण के नामों को पुकारते हैं तो कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण के अनंत नाम हैं, कृष्ण राम हरि गोविंद मुकुंद मुरारी वनमाली श्याम सुंदर राधा रमण राधा कुंज बिहारी रास बिहारी। और इन नामों में भगवान ने अपनी सारी शक्ति निहित कर रखी है। भगवान की सारी शक्ति उनके नाम में है। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणी न काल है। और उस नाम को लेने के लिए भगवान ने कोई नियम भी नहीं बनाए हैं कि सवेरे के समय लेना चाहिए शाम के समय लेना चाहिए। कहीं पर आप भगवान का नाम ले सकते हो और जहां पर भी आप नाम लेते हो वो स्थान वैकुंठ हो जाता है, वो स्थान गोलोक वृंदावन हो जाता है। कृष्ण नाम कीर्तन सारी मानवता के लिए कल्याणकारी है। आज जन्माष्टमी के दिन मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब उच्च स्वर में भगवान के कीर्तन में भाग लें और इस तरह से कीर्तन के द्वारा अपने हृदय में भगवान कृष्ण को बुलाएं। हमारा हृदय ये कृष्ण का स्थान है, ये कृष्ण का निवास स्थान है। लेकिन अब इस हृदय में काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सारे अनर्थ भरे हुए हैं और इसके कारण हम अपने स्वाभाविक स्थिति को भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और इसीलिए हम दुखी हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करी पाचत ये माया तारे जपटिया धरी। जीव ये भूल गया है कि मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए माया ने उसको पकड़ लिया है और माया अपने त्रिशूल से आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुखों से जीव को पीड़ित कर रही है। लेकिन जब हम कृष्ण नाम संकीर्तन में लगते हैं तो अपने आप ये सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तियेव 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 गतिर अन्यथा। हम जिस पीरियड से गुजर रहे हैं वो कलयुग है। कलयुग यानी झगड़े का युग, क्वारल हिपोक्रेसी। यहाँ पर बहुत सारे भ्रष्टाचार, बहुत सारे झगड़े, देश और देश में झगड़े, शहर और शहर में झगड़े, परिवार में सदस्यों में झगड़े होते हैं, कई बार मंदिरों में भी झगड़े हो जाते हैं। लेकिन इन झगड़ों को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम सब हरि नाम संकीर्तन में भाग लें। आज शीला प्रभुपाद की कृपा से भारतीय, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज, अफ्रीकन सब भक्त एकत्रित हो रहे हैं और सब मिलकर गा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे इस्कॉन के मायापुर केंद्र में आप देखोगे ये सब देशों के लोग एकत्रित होते हैं और नाम कीर्तन में भाग लेते हैं, वैयक्तिक सुख के लिए और समाज के कल्याण के लिए एक ही तरीका है और वो है नाम संकीर्तन। आइए हम अभी कुछ मिनटों के लिए कृष्ण के नामों का कीर्तन करेंगे और आप सब भी उस संकीर्तन में भाग लीजिए। ये कृष्ण नाम ये युग धर्म है। हरे ये शब्द का अर्थ है राधा रानी और कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक कृष्ण, और राम 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 का अर्थ है राधा रमण, राधा रानी में आनंद देने वाले। तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं समझ में मृदंग कैन काम मृदंग, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो इसका मतलब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप जानते हैं वो कहानी कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, जब द्रौपदी की बेइज्जती हो रही थी, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, हे कृष्णा हे गोविंदा, हे कृष्णा हे गोविंदा, बोलिए। द्रौपदी ने सच्चे दिल से भगवान को पुकारा और भगवान प्रकट हुए वस्त्र के रूप में। आपने कहानी सुनी है कि जब गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो गजेंद्र हाथी लाचार था, निसहाय था, और उसने भगवान विष्णु को पुकारा और स्वयं भगवान प्रकट हुए और उस मगरमच्छ का अंत कर दिया। ऐसी हम माया के पंजों में फंसे हुए हैं, लेकिन आज जन्माष्टमी के दिन अगर हम सच्चे दिल से एक बार भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, मुझे माया की शक्ति से बाहर करो और मुझे आपके चरणों में स्थान दो। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिन्त्या। हे नंद नंदन कृष्ण, मैं आपका नित्य सेवक हूं, लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं संसार सागर में गिर गया हूं। हे कृष्ण, हे गोपीनाथ, हे कुंज बिहारी, हे श्याम सुंदर, हे राधा रमन, मुझे बाहर निकालो, मुझे संसार से बाहर निकाल कर आपके चरणों में दत्तांत। इस भावना से हमें कृष्ण के नाम को पुकारना, उनके चरणों में उनकी सेवा की प्रार्थना करते। हम अभी 10 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। कृपया आप सब लोग इस तरह से सच्चे दिल से कृष्ण को पुकारिए कि हे कृष्ण, आप ऐसा कुछ करिए कि मैं आपके चरणों में पहुंच सकूं, मेरे जीवन को शुद्ध बनाइए, मुझे कृष्ण प्रेम दीजिए, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए, जिससे मैं शरीर छोड़ने के बाद वापस आपके धाम जा सकूं। इस भावना से हम सब अभी गाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग खड़े हो जाएं कुछ मिनटों के लिए। ये कीर्तन ये एक तरीका है भगवान को पुकारने का, ये एक पूजा का तरीका है। जब मैं गाऊंगा तब आप सब हाथ ऐसे जोड़ेंगे, सब लोग जोड़ के दिखाइए इस तरह से, जब मैं गाऊंगा हाथ जोड़ के, और जब आप गाएंगे तब हाथों को ऐसे ऊपर करिए। प्रभु जी आप दिखाइए, मुकुंद एक डिवोटी आपको दिखाएंगे, और अपने बाएं पैर को दाहिनी तरफ और दाएं पैर को बाईं तरफ दिखाइए, इधर इस तरह से सब लोग कीर्तन में भाग लें। जब मैं गाऊंगा तो हाथ ऐसे जोड़िए, और फिर जब आप गाएंगे तो हाथ ऐसे ऊपर करके दिखाइए। ये चैतन्य महाप्रभु की विधि है। ये डांस जो है ये दिव्य डांस है, ये डिस्को डांस नहीं है, ये कृष्ण जन्माष्टमी का डांस है जो कृष्ण को प्रसन्नता करने वाला है, और पूरे पूना को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे भारत को, और पूरे विश्व को, और पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध बनाने वाला है। आइए हम सब कीर्तन में भाग लें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री वासादि गौर भक्त वृंदा जय